تعالیٰ سے درس لیتے ہوں، ان کے حوصلے کیوں کر پست ہوں؟ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا مادر وقار حیدر شہید کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں، شہید وقار حیدر کی والدہ گرامی، اور پیام شہداء کانفرنس سے اپنا عظیم خطاب فرمائیں۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات،
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب اپنے محترم حجت الاسلام علامہ امام علماء کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں اور آپ کی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج آپ سب ہمیں فرصت دے رہی ہو۔ آج میرے شہید وقار حسین کی سالگرہ ہے 23 فروری، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور اپنے آغا امام زمانہ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ مولا آغا امام زمانہ، میرا بیٹا اپنے علماء سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، جب بھی ٹی وی میں اس آغا امام خمینی کے جو وہ ایران کا جو جنگ چل رہا تھا اور حسن نصر اللہ جب ان کے فوجی کو دکھاتے تھے تو ایک دم اٹھ کے اپنا ہاتھ اٹھا کے اپنے ابو سے کہتے تھے، ابا جان آپ کا کوئی سفارش نہیں ہے کہ مجھے اس لشکر میں بھیج دو؟ میرا 19 سال کا جوان وقار حسین جو اتنی کم عمری میں اپنے آغا امام زمانہ کا عاشق، نماز شب پڑھنے والا اور دعائیں احد، زیارت عاشورہ اور عام ٹائم جو بیٹھتا تھا وہ سوائے نوحے کے اور کچھ نہیں سنتا تھا۔ میں خالی اس کے لیے رومال رکھتی تھی، بار بار وہ نوحے سن کے اپنے آنسو پونچھتا تھا، ہر نماز کے لیے غسل کرتا تھا، گھر سے جب نکلتا تھا تو غسل شہادت کر کے نکلتا تھا۔ اور مجھے فخر ہے ماشاءاللہ کہ میرا بیٹا اس راہ میں شہید ہوا۔ جب یوم قدس کا حادثہ ہوا، اس کا ایک دوست رات بھر انہوں نے وہاں شب بیداری کی، اسے بہت محبت کرتا تھا۔ جب وہ دوسرے دن شہید ہوا، یہ تھوڑا لیٹ پہنچا وہاں پہ، تو گھر واپس آیا بہت رویا، کہا امی، میں نے کہا کیا بیٹا؟ کہا میرے اعمال میں، میرے نماز میں شاید عبادت میں کچھ کمی تھی جو میں بچ گیا۔ پھر اس نے یہی بس اس کا کام شروع ہوا کہ صبح سے شام تک وہ بس نمازوں میں، مجلسوں میں، اور جب کوئی امام بارگاہ میں جشن ہوتا تو وہ اتنی خوشی خوشی جا کے اس کا اہتمام کرتا جیسے میرے وقار کا شادی ہو، بہت خوبصورتی سے۔ اپنے شہادت سے پہلے ہمیشہ کہتا تھا دعا کرو کہ میں شہید ہو جاؤں۔ آخری 2 مہینوں میں یہی کہتا تھا کہ میں شہید ہو رہا ہوں۔ چہلم سے 1 ہفتے پہلے اسے کربلا کا بہت شوق تھا، بہت کوشش کی مگر نہیں ہوا، تو سب زائرین جو جا رہے تھے، واپس آیا 9 بجے، گھر میں داخل ہوا، میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا کہاں تھے بیٹے؟ کہا میں گیا تھا اپنے دوستوں سے ملنے، امی آج پتہ ہے 19 بس گئے ہیں کربلا کی زیارت کے لیے، ان میں سے میں اور آپ نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے بیٹا، اگلے سال انشاءاللہ عشرے میں ہم لوگ کربلا میں ہوں گے۔ تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کے یوں کہا، امی جان اگلے سال تو میں شہید ہو رہا ہوں۔ پھر اسی طرح اس کے ابو نے کہا، بیٹے ابھی محرم ختم ہو رہا ہے، اپنے پیپروں کی طرف بھی کچھ توجہ دے۔ کہا بھائی آپ کا پیپر کہا؟ اپریل میں۔ کہا بیٹے چیلم بھی نزدیک ہے، بس یہ چیلم جو گزر جائے انشاءاللہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینا۔ फिर कहा कि बेटे आपने अपना फॉर्म भरा है? तो उसने कहा नहीं अबू। कहा बेटा अपना फॉर्म भरो। तो इधर उधर खुद को घुमाया, फिर मुझसे कहा कि अबू से कहो कि फॉर्म ना भरे। मैंने कहा क्यों बेटे? कहा अम्मी मैं शहीद हो रहा हूँ, क्यों अपना पैसा ज़ाया कर रहे हो? इसी तरह जब अबू ने ज़बरदस्ती की, उससे कहा कि बेटा क्यों आप नहीं चाहते हो पढ़ना तो मुझसे कहो। कहा नहीं अबू, आखिर जब मजबूर हुआ तो उसने यही बात कही। तो अबू ने पैसे दिए, कहा आपको बस हमेशा मतलब हमें यही कहता था कि मैं शहीद हो रहा हूँ। तो मैं रोती थी क्योंकि हमारे घर में 5 शहीद है। तो इसी तरह मैंने कहा बेटा मेरा भाई भी शहीद हुआ है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, पहले दुआ करो कि आपके माँ का जनाजा उठे, फिर उसके बाद बेशक आप शहीद हो। तो वो कहता था अम्मी क्या मज़ा जब इंसान का गुनाह ज़्यादा हो जाए, मुझे ऐसी शहादत नहीं चाहिए। आके मेरे बाजू से बाजू पकड़ता था और मेरे माथे पे चूमा दे के कहता था आप शहीद की वालदा हो, आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप शहीद, सब आपको शहीद की माँ कहे। और वाकई मुझे आज फ़ख्र हो रहा है, मगर अपनी बीबी ज़ैनब फातिमा ज़हरा के लिए मैं हमेशा रोती, मैं अपने बेटे के लिए नहीं रोती, क्योंकि मैं अपनी भी तो जो अबू ने कहा कि बेटा जाओ अपना फीस भरो, तो वो बहुत मुश्किलों से जाके अपना फीस भर के वापस आया और अपनी दो तस्वीर मेरे पास यूं डाल दिया। कहा अम्मी ये लो, उस वक्त कहाँ ढूंढोगे? फिर अपना फॉर्म बहन के हाथ में दिया, कहा आप लोगों का पैसा जाया। दूसरे दिन छेलूम था, फिर आके सुबह ही सुबह अपने अबू से कहा कि अबू मैं अपने सर पे वो खारदी जनी जो करते हैं, कहा सर पे खारदी मारा हूँ। तो अबू ने कहा कि नहीं बेटे, माशाल्लाह मेरा इतना जवान बेटा, अगर कोई आपका रकमक खट जाए तो आप क्या करोगे? मेरा बेटा पागल होगा। कहा अबू मैं जिंदा रहूं कि पागल हो जाऊं, मैं तो शहीद हो रहा हूं, बस आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। तो अबू ने कहा चलो बेटा लगाओ। वहां से जो वापस आया छेलुम के रात जब घर में दाखिल हुआ तो सिर्फ उसके दांत चमक रहे थे, पूरे चेहरे पे खून था। मैंने कहा बेटा ये क्या किया? तो कहा अम्मी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे करबला का सिर्फ शौक था, वो भी नसीब नहीं हुआ, मैंने बस अपने इमाम को पुरसा दिया। फिर मैंने कहा कि अब इसके अपनी मेरी जो बेटी है, मैंने उससे कहा कि बेटी इसके सर पे मेहंदी लगाओ ताकि इसके खून रुक जाए। तो उसने कहा नहीं अम्मी आपने खुद लगाना है। मैंने कहा बेटा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मगर ज़बरदस्ती उसने मेरे घुटने पे तौलिया डाल के अपना सर रखा। कहा अम्मी आपने खुद डालना है। मैंने जैसे उसके बाल उठाए तो उसके अंदर खोपड़ी नजर आ रही थी, तो मेरे आंसू पता नहीं उसके चेहरे पे गिरा। तो उसने अपना हाथ उठा के मेरे चेहरे को तपतपाया और कहा अम्मी आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो, जब मेरा जनाजा आएगा मेरा लाश टुकड़ा टुकड़ा आपके पास, तो उस वक्त क्या करोगे? जहाँ भी कोई हादसा होता तो वो वहाँ पे जाता मेरे बेटे को। मस्तूम जहाँ भी मतलब कोई होता तो ये वहाँ पहुँच जाता वकार, और हमारे लिए मैसेज भेजता कि वकार जख्मी, हमें तैयार कर रहा था। फिर बाद में मैसेज आता कि वकार शहीद। जब मैं उसके दोस्तों को फ़ोन करता तो घर आके हंसता था, कहते अम्मी आपको मुझसे इतनी मोहब्बत है। इसी तरह आखिरी दिन उसका अरमान पूरा हुआ, 10 जनवरी सुबह जब नींद से उठी और अपने शहादत से एक हफ्ते पहले उसने मेरे मोबाइल में बहुत सारे नोहे रिकॉर्ड किए। उसे अली अकबर का नोहा बहुत पसंद था, जब भी वो नोहा लगाता तो कहता अम्मी मैं बाहर अगर होती तो मुझे बुलाता, आओ अम्मी जान आपका नोहा चल रहा है। फिर मेरे मोबाइल में वो नोहा उसने रिकॉर्ड किया। और हम लोग जो टीवी चलाते थे वो टीवी बंद करता और वही नोहा डेक में लगा के कहते ये सुनो, मैं आखिर में आपको ज़रूर सुनाऊंगी, एक बार उसकी वही नोहा सुन लो, वही मेरा वक़ार जो नमाज़ शब पढ़ता था, अपने मौला को पुरसा देता था। आज माशाल्लाह कितने उसको पुरसा देने वाले हैं, मुझे फ़ख्र है। फिर इसी तरह सुबह हुई, वो हर रोज़ जो शहादत शहादत कह के आखिरी दिन जो पहुंचा, मेरी तबीयत उस रात बहुत ख़राब थी। रात भर मेरे साथ बैठा, और ये MWM का कार्ड है जो उसके जेब में धमाके में इस तरह हुआ है, उसका साथ था। बार बार वो बाहर जाता ड्यूटी दे के फिर वापस आता, मुझसे पूछता अम्मी कैसी तबीयत है। जब तक मैं और उसके अब्बू नहीं सोते थे तो वो नहीं सोता था। बहुत खिदमत गुजार था, दोस्तों का सबका। जब सुबह हुई तो अपने बहन से कहा, बहन आज बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, मैं शहीद हो रहा हूँ। तो बहन ने रोया, कहा देखना अब अपनी अम्मी अब्बू से मत कहना, तुम हर रोज सुबह उठ के उन्हें कोई नया पैगाम देते हो। इस तरह थोड़ी देर के बाद मैं कमरे में जो आई तो उसने अपने बालों पे हाथ फेर के कहा, अम्मी जान मेरे बाल लंबे हैं। मैंने कहा हाँ बेटा। कहा हजरत अब्बास और रसूल खुदा का बाल लंबा था? मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे पता नहीं। अपने बहन से पूछा, मेरी बहन जो है उसकी बहन जो है खून में पड़ी हुई। मैंने कहा उसके इलम में इजाफा है, मैं तो अनपढ़ जाहिल, आप उससे पूछो। फिर उसके बहन ने भी कहा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कहा जाके अपना बाल काटो। हम लोगों के सब ने कहा कि हाँ। फिर गया अपना बाल बना के वापस आया। फिर बालों वो अपने अब्बू से कहा, अब्बू जान आज मैं आपको एक नसीहत कर रहा हूँ। तो अब्बू ने कहा, कहो बेटा मेरे शहजादे, क्या क्या फरमाइश कर रहा है मेरा बेटा? तो उसने कहा कि अब्बू जान आज जब मैं शहीद हो के टुकड़ा टुकड़ा आपके पास आऊं तो देखना रोना नहीं, अगर रोना आए तो शहजादा अली अकबर और शहजादा कासिम पे रोना। फिर हम सब ने कहा कि मेरे बेटे को क्या हुआ, क्यों ये इतनी जिंदगी से इतनी बेजार है? मेरा बड़ा बेटा करार हुसैन जो हमेशा बाहर निकलता था, सुबह हमारे कमरे में आता तो भाइयाँ आपस में मिल के बैठ के बातें करते हंसते थे, उस दिन वो करार कमरे में नहीं आया, उसे काम से बाहर निकला। पता नहीं वकार को कैसे पता चला, पाँव नंगे उसके पीछे दौड़ा और आवाज़ लगाया, करार भाई। करार रुक गया, वापस आया, कहा भाई आपने क्यों मेरे पीछे आवाज़ लगाया, आपको पता नहीं कि पीछे से आवाज़ नहीं लगाते? फिर उसके चेहरे की तरफ देखा सर से पाँव तक, पता नहीं इस दिल में क्या सोचा कि इससे क्या कहूँ। तो भाई से कहा, भाई आज अपना ये बूट मुझे दे दो। भाई ने कहा बस इसीलिए मुझे बुलाया? कहा भाई। फिर वो हंसता हुआ कमरे में आया, अपना बूट उतार के कहा ये पहन लो। फिर कहा भाई नहीं, मैंने इसलिए नहीं बुलाया, आज मैंने इसलिए आपको बुलाया कि आज मैं शहीद हो रहा हूँ। भाई ने कहा आपको देखो, अपनी शक्ल देखा है शहादत? सबको गुस्सा आता था उसकी बात पर। तो कहा आपने चेहरा देखा है? दो तीन बार जो उसने तकरार किया तो आखिर में उसे गुस्सा आया और यही कहा कि आप क्या पूरी दुनिया मुझे याद करेगी। उसके अपने बहनों से जो कपड़े वगैरह मांगता था तो थोड़ी सी देर होती तो यही कहता था कि मेरी खबर पे मुराद लेने आओ तो मैं भी देर से दूंगा आप लोगों की हाजत। मुझे शहीद की माँ पुकारता था हमेशा। आखिरी हफ्ता उसी दिन जब शहीद हो रहा था तो जुमेरात की रात अपने दोस्तों के साथ गली में बैठा हुआ था, कहा सब मेरे साथ बैठ के बातें करो, अगले जुमेरात को आओगे तो ये शहीद वकार हुसैन का घर होगा। और अपने चचा के भतीजे को भी नसीहत किया, कहा बेटा मैंने अपनी जगह बना ली है, तुम तो ज़ियारत को जा रहे हो, जब तक आओगे मैं शहीद हो जाऊँगा। तो उसने भी मुझसे कहा कि चाची मैंने वक़ार को गाली दी। मैंने कहा अपना चेहरा देखा है शहीद? कहा बेटे अगर आपकी मर्जी, मैंने तो अपनी जगह बनवा ली है, आप अगर सुनोगे तो अच्छा, नहीं तो आपकी मौत गटर में होगा। वो रो रहा था, कहा चाची मैंने उसकी बात नहीं सुनी। फिर इसी तरह शाम हुआ, मेरा बेटा गुसल करके तैयार हुआ, जब गुसल खाने से निकला तो पता नहीं उसके चेहरे उसके दांत चमक रहे थे, मैं उसका चेहरा देख के मुझे रोना है। मैंने कहा जी मेरा बेटा कितना खूबसूरत हुआ है कि उसका चेहरा इतना चमक रहा है। फिर अपने बालों पे हाथ पैर के मुझसे कहता था अम्मी अच्छा लग रहा हूँ। तो मैंने कहा यह सामने शीशा है, यह लाइट, शायद इसलिए इसका चेहरा चमक रहा है। तो वो उसने अपना जगह बदला, दूसरी तरफ जाके खड़ा हुआ।